दोनों को मान करके बानू के माध्यम से बापू की सेवा करो, और नहीं तो उसमें प्राकृत बुद्धि होने की संभावना हो जाएगी। इस सब को विचार करके गुरु जी की सेवा अभिन्न रूप से भगवत स्वरूप से, किंतु उनको आश्रय भगवान उनको समझो और कृष्ण को विषय भगवान समझो। इस प्रकार से यद्यपि शास्त्रों में आचार्यं मा विजानीयात् अर्थात गुरुदेव का भगवान का स्वरूप कहा है, उसका तात्पर्य हरिभक्त विराट इत्यादि में बतलाया। सनातन गोस्वामी ने दशापराध के वर्णन में शिवस्य च विष्णु गुणनामादि अभिया
अभिन्नम
पश्य, तो ये समय उन्होंने वर्णन किया। यहाँ पर अभेद माने क्या, प्रियत्व बुद्धि शंकर का हो या गुरु को हो, इस प्रकार से समझ करके। बल्कि उन्होंने और कहा है गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय समय सखी समझना सर्वांग सुंदर है। उच्च कोटि का साधक जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को किस रूप में देखा, रूप मंजरी के रूप में देखा, तो ऐसा जिसका भजन में उन्नत हो गया है वो इस रूप में देख करके उनकी सेवा करेगा। तो शास्त्रों में यद्यपि भगवान और गुरुदेव को अभिन्न बतलाया गया है, तभी हम लोगों को प्रियत्व के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए, मायावाद अद्वैतवाद की तरफ में अभिन्न नहीं समझना चाहिए। इसीलिए इन्होंने बतलाया प्रथमम तो गुरु की पहले पूजा हो करके तब मेरी पूजा करो, भगवान कहते हैं हरि भक्ति विलास में उन्होंने उद्धृत किया है, पहले गुरु की सेवा करो और सेवा करने के बाद में तब मेरी पूजा करो, तब मैं उस पूजा को ग्रहण करता हूं, अन्यथा सिद्धि निष्फल हो जाएगी। और भी वे जगह बतला रहे हैं, जैसे नारायणो अपि विकृतम जाति गुरु प्रत्युत्तस्य दुर्वधे कमलम जलापेतम शोषयसि रविर न पोषयसि। बतला रहे हैं जो लोग गुरु की सेवा नहीं करते हैं और भगवान का भजन करने का ये भाव दिखलाते हैं वो नराधम है, जो गुरु की सेवा नहीं करते। गुरु की सेवा माने क्या, गुरु कैसे प्रसन्न हो इस पर सब कुछ निर्भर करता है। बहुत से लोग सेवा करते हैं किंतु दूसरी दृष्टि से करते हैं, गुरु को प्रसन्न क्या करने से गुरु प्रसन्न होंगे, इस रूप में गुरु की मनोभीष्ट सेवा होनी चाहिए। तो जो भगवान का पूजन करता है किंतु गुरु की नहीं पूजन करता है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, तो वो नराधम भगवान का को भाजन हो जाता है, भगवान उस पर क्रुद्ध कर देते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान नगति कुतोपि। जैसे सूर्य जल संपर्क युक्त कमल को प्रस्फुटित बना देता है, जल में कमल है और सूर्य ऊपर में तप रहे हैं जेठ की दुपहरी है, यदि सरोवर में पानी नहीं है और कमल है तो क्या होगा, जल करके भस्म हो जाएगा। और यदि कमल के नीचे पानी है भरा पूरा और कमल उसके ऊपर में है और सूर्य वहां से अपनी रोशनी देता है तो कमल प्रस्फुटित हो जाएगा, उसमें सरस सुगंधिता सभी कुछ आ जाएगी। उसी प्रकार से गुरु है नीचे जल स्थली और कृष्ण है सूर्य स्थली, साधक है कमल और गुरु जी कैसे हैं, जो कमल का पोषण करने वाला है वो पानी के समान है, सरोवर का पानी, और ऊपर में कृष्ण का नाम या कृष्ण स्वयं है। कृष्ण की कृपा होने पर भी गुरु जी की कृपा नहीं है तो वो कमल का फूल सूख जाएगा, इसको याद रखो। गुरुदेव इज लाइक वाटर इन ए टैंक, कृष्ण एंड कृष्ण नेम इज लाइक सन एंड साधक इज लाइक लोटस फ्लावर। इफ वाटर इज देयर एंड सन इज शाइनिंग देन लोटस विल बी सो फ्रेग्रेंट एंड सो मच प्रफुल्लित, एंड इफ देर इज नो वाटर ओनली कमल इज देयर लोटस इज देयर एंड सन इज शाइनिंग देन इट विल बी ड्राई। इसलिए गुरु की सेवा करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस दृष्टांत में गुरु जल स्थानीय है, सूर्य भगवत स्थानीय है। इसी प्रकार से सोच करके गुरु जी को प्रसन्न करते हुए, गुरु जी यदि अप्रकट है उनको समझो, क्या समझो, अप्रकट नहीं है, मेरे सब समय हमारे हृदय में है, मेरे साथ में सब समय है, ऐसा समझना चाहिए। गुरु कभी भी मरते नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्र में विचार नहीं देखा गया। इसलिए अंतर्जामी के रूप में भी गुरु हमारे साथ में, एक जन्म नहीं, 10 जन्म, 20 जन्म, लाख जन्म तक यदि हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो सदगुरु उसके लिए आते हैं और उसको अंत में कृष्ण के चरणों में पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु को ऐसा मत समझो, ये गुरु हमारे ऐसे हैं, अब प्रकट हैं तो खूब तरह से उनकी सेवा करो। ये रघुनाथ दास की स्वामी की शिक्षा है। आज ये दूसरा श्लोक हमने समाप्त किया, क्रमशः हम लोग बात करेंगे। कल हम लोग एकादशी मान रहे हैं, दसवीं का और एकादशी व्रत है, इसलिए हम लोग कल एकादशी करेंगे 6 बजे। हम लोग चेष्टा करेंगे, यहाँ से कोई था महाप्रभु का, हम कोई जानता है तो बतलाए तो हमें। श्रीनिवास जी को कहा जाता है वो नारद जी का होता है, और वो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को सुन करके बराबर मूर्छित होकर के नहीं गिर जाते थे। कौन ऐसा भक्त है महाप्रभु जी का जो राधा कृष्ण का भजन उस रूप में नहीं करता है? कोई भी बतलाए तो, रूप गोस्वामी से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े तक। रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तक में यह सब वर्णन नहीं किया, ये सब चीज हमसे गुरु जी नहीं कहेंगे, किंतु हमारे सनातन गोस्वामी थे, सनातन प्रभु जिनका नाम था
मुनि महाराज,
गुरु महाराज उनसे कैसे बातचीत करते थे हंस करके। हम लोगों के साथ में तो कुछ ऐसे गंभीर रूप से रहते थे, किंतु उनके साथ में कैसे रहते थे? उनके साथ में गोपियों की बात कभी जीवन में उन्होंने कहा ही नहीं। इसलिए ऐसी बात मत समझना, जिसका अधिकार है उन लोगों के लिए किसी को मना नहीं किया, अनाधिकारी लोगों के लिए जो पशुवत हैं, जो भजन नहीं करते हैं, अभी भजन का आईवीसी भी नहीं जाने हैं, जिनको संबंध ज्ञान नहीं, उनके लिए ये सब मना है। किंतु जो इसके लिए नहीं मना है वो बतलाया गया, श्रद्धान्वित तो अनुसुनी आतत वर्णय अभिजा, किसके लिए? जिसको श्रद्धा हो गई है उसी के लिए। तो किसी को जन्म जन्मांतर में श्रद्धा ही नहीं होगी और वो भागवत सुनेगा ही नहीं?
नहीं, ऐसे तो ग्रंथ में लिखा नहीं, ऐसे करो ऐसे मत करो ऐसे लिखा नहीं,
इसके विषय में हम लोग पीछे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान को पाषाण रेखा, उनका वैराग्य था वो पाषाण की रेखा थी। गौर जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे ठीक उन्हीं के तरफ में इनका वैराग्य, किसी से मांगे नहीं, कुछ भी नहीं खाते, भूख लगी अच्छा तू खाएगा, मन तू खाएगा, तुम खावे खावे, ऐ जमुना कादा नहीं है कि राधा कुंड कादा नहीं है ताकि खवाइए, खा तू। कुछ दिन पड़े तार चौक यही बंद हो गया, लौकिक चौक बंद हो गया, अर्थात उनका वो अंधे हो गए। कोई बात नहीं, ये आंख बल्कि न रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये संसार में यही आंखें हम लोगों को लेकर के फंसा देती हैं। इसलिए उनका उनकी जो चक्षु है प्रज्ञा चक्षु है, माने भक्ति की चक्षु है। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे तो अंधकार समय में भोर में प्रभुपाद जी के पास में 3 बजे पहुंच गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कैसे आए, और उस समय में कोई रास्ता घाट नहीं था, उस समय में अकेले वहां से चले आए, कैसे चले आए? भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ वो चले जाते थे रोज भागवत पाठ सुनने के लिए, गंगा को पार करके गोद्रम कुंज में चले जाए, कैसे चले जाए? इसलिए बड़े भाग्यवान थे, पहले वृंदावन में भजन किया ब्रजमंडल में, और अंत में चले गए तो फिर वहां नवद्वीप उन्होंने भजन किया। देख लाया ये नवद्वीप धाम में अपराध रहने पर भी यदि गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर के निष्कपट होकर के भजन करता है तो प्रभु दया करते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण धाम ये सब कुछ अपराध का विचार करते हैं, इसलिए जल्दी से वहां पर सिद्धि हो सकती है, इसलिए वहां पर चले। बड़े कठोर वैराग्यवान थे। शाम को हम लोग उनके संबंध में हम लोग विभिन्न वक्ता लोग सब उनके संबंध में गौर कुशोर दास महाराज जी का भजन वैशिष्ट और वैराग्य इत्यादि के संबंध में हम लोग, अब तो शायद साफ हो गया है, अभी हम लोग परिक्रमा के लिए सभी लोग चलते
वंशा कल्पतरुश्च कृपा सन्धिवत पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुते तमपे च कृत्यं द्वैपायनो विरहकाकर्या जिभाव सुप्रीति तन्मयतया सर्वोभि नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारसां गौरीपादं जाये वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्थित कृष्ण भक्ति पदे देवी चक्रवर्ती
हमारे बड़ो बड़ो सब रंगीत अच्छी से कुछ एकादशी तिथि है। आज के तिथि के दिन भगवान जी आज शयन से उठे हैं। अब तक 4 महीने वो शयन में थे, इसलिए इसको उत्थान एकादशी कहते हैं। आज ही के दिन में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री संभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री गौर किशोर दास बाजी महाराज का आज नित्य लीला में प्रवेश हुआ था। टुडे इज द ऑफिशियल डे फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ महाराज दे गुरुदेव और लखनऊपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। गौर किशोर दास महाराज जी का जीवन चरित्र भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम लोग इनके संबंध में ब्रह्मचारी लोग और सब लोग बोलेंगे। उत्तर सभा जी महाराज जी के जीवन चरित्र के संबंध में बहुत कुछ सुना। अभी अभिनय आप लोगों को देखना है, अभी आरती भी नहीं हुई है, इसलिए मैं भी संक्षेप में 2-1 बात उनके संबंध में बतलाऊंगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का आज शिरोभाव तिथि है। आप लोग पहले ही सुना है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरुपाद पद्म है। प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, मुझको इस बात का बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा भारी विद्वान हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर का मैं पुत्र हूं, अभिजात वंश में मैं जन्मा हूं, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का मैं पारंगत विद्वान हूं, किंतु मैं जब गौर किशोर दास बाजी महाराज जी के चरणों में गया और उनसे प्रार्थना की कि आप हमें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार उन्होंने प्रत्याख्यान किया, ग्रहण नहीं किया। वो लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हमारे अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर दिया उन्होंने, जबकि इनको अभिमान नहीं है, प्रभुपाद जी को भी तो भी ऐसा कहते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत चेष्टा की। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा यह लड़का मर जाएगा, जीवों पर दया करना उचित है, तो तब उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया। प्रभुपाद ने उनके संबंध में बहुत कुछ लिखा, विशेष करके इस वंदना में, जैसे कि वो बच्चे ने बतलाया, कृष्ण गोविंद या क्या नाम बतलाया, नमो गौ किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभा रसाम्बुधि पादम्भुजायते नमः। नमो गौ किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये, वैराग्य की साक्षात मूर्ति है गौर किशोरदास बाबा जी। संसार के लोग वैराग्य को नहीं समझते, कपड़ा नहीं पहनना, कुछ ओढ़ना नहीं, खड़ाऊ पर चलना या पैदल चलना, कुछ नहीं खाना, फल खाना या उभी नहीं खाना, हवा नहीं पीना, इसको वैराग्य समझते। किंतु यथार्थ में जिसने बतलाया ना, अपराकृत वैराग्य के समुद्र में इस वैराग्य का एक बिंदु अटम भी इसका मूल्य नहीं है। इस वैराग्य का विषयों की हम चिंता न करते हैं और मन को पुनः पुनः लाते हैं और उसके लिए कष्ट स्वीकार करते हैं, ये वैराग्य नहीं है। ये तो स्मशान वैराग्य, फलगु वैराग्य है। जगत में अधिकांश रूप में जो वैराग्य दिख पड़ता है ऐसा ही है, उनका वैराग्य ऐसा नहीं था। जिसको, जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को रसाम्बुधि, रस की अम्बुधि, रस का जो समुद्र है उससे जब ये संबंध होगा तब ये विप्रलंब रसाम्बुधि होगा, विप्रलंब होगा, तब वो वैराग्य होगा। रस के समुद्र कौन है? अखिल रसामी सिंधु श्री कृष्ण है। किंतु ऐसे अखिल रसामी सिंधु को भी श्रीमती राधिका जी अपने प्रेम के समुद्र में निमज्जित कर देती हैं। वो राधिका जी अखिल रसामी सिंधु की भी रसामी सिंधु है। उनका कृष्ण के प्रति जैसा भाव है, उसको जो अनुभव करेगा, उसको यथार्थ वैराग्य हो सकता है। ये उसको विप्रलंब भाव की अनुभूति हो सकती है। एक साधारण विचार के लिए देखिए, समझने की चेष्टा करें। श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय में कृष्णचंद्र स्वयं गोपियों की अवस्था का वर्णन करते हैं, ये कैसे वो हमारे विरह में दुखी हैं। वो कैसी हैं? देह दैहिक सब कुछ उन्होंने प्रत्याग कर दिया है, हमारी अत्यंत प्रिया है, मैं उनका बहुत प्रिय हूं। उन्होंने अपना देह गेह कलत्र धन संपत्ति के तो बात क्या, लोक लज्जा तक छोड़ दी है। इन गोपियों से सुखदेव गोस्वामी की तुलना करें, सुखदेव गोस्वामी जी नंग धड़ंग घूम रहे हैं, खाते भी कुछ नहीं है, जगत की कोई चिंता भी नहीं करते, एकदम परम वैराग्यवान है। और इधर गोपियों का वैराग्य देखिए, दोनों में वैराग्य में कौन श्रेष्ठ है? वैराग्य गोपियों का वैराग्य जो उन्होंने अपने पति पुत्र कलत्र धन संपत्ति मान लोक लज्जा सब कुछ छोड़कर के कृष्ण के चरणों में उपस्थित, इनका वैराग्य कितना ऊंचा। ये वैराग्य किस लिए? इसलिए कि रस की अम्बुधि श्रीमती राधिका जी हैं, उनके लिए ये संभव है, उन गोपियों के लिए संभव है जिसमें कृष्ण भी डूब जाते हैं जिनके विप्रलंब रस में, तो और की तो बात क्या। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, नारद जी या ये साधारण लोग साधारण लोगों का वैराग्य उनके वैराग्य के सामने कुछ भी नहीं है, किंतु समझेगा कौन इस चीज को, साधारण आदमी नहीं समझ। गौकिशोर दास जी महाराज विप्रलम्ब भाव में डूबे रहते थे, क्यों? श्रीमती राधिका जी की अपने को दासी कहते थे। वह वृंदावन में विप्रलम्ब रस का कीर्तन करते थे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण प्रेममयी राधे कोथाए गो राधे राधे, कृष्ण बख बिलासिनी राधे राधे कोथाए गो राधे, गोसाई एक बार डाके राधा कुंडे, एक बार बंसी बटे, कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, और रोते थे उसकी अनुभूति करते थे। इसलिए मरकट वैराग्य और सब दूसरों का वैराग्य, यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी का वैराग्य भी है, जितना है कि नहीं हम मैं तो नहीं जानता। इसलिए इन चीजों की जो अपराकृत अनुभूति होगी तब इन सब चीजों का वंदन इत्यादि का समझेगा, जो गोरकिशोर दास आज हमारे कैसे वैराग्यमान थे, उनका जीवन चरित्र ऐसा है। रस की अनुभूति कृष्ण और राधा जी के अत्यंत निकट निज जन है, इसलिए प्रभुपाद जी उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। उनका जीवन चरित्र देखने से ऊपर से हम विचार नहीं कर सकते, तो भी थोड़ा सा आलोकपात हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु जी उनके पास में गए, शायद आपको भ्रम हो गया नवीन जी को, प्रभुपाद जी श्री गौकिशोर दास बाबा जी महाराज और वो जो बाबा जी थे बंसीदास बाबा जी, इन दोनों के पास में हमारे गुरु जी गए थे ना। ये 1924-25 के समय की बात होगी, उस समय गौकिशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद का जिस समय संन्यास हुआ है उससे एक वर्ष पहले गौकिशोर दास बाबा जी महाराज और प्रकट हुए थे, नहीं तो उन्हीं से उन्होंने संन्यास लिए होते।
तो प्रभुपाद जी संन्यास लेने के उपरांत
अभी पीछे बात, नहीं तो ये पीछे गड़बड़ हो गया, तो तुम अच्छी तरह से देखना उनका डेट, तब वो समझ में आएगा। हमारे गुरु पाद पद्म जी भाई बहुत गुरु निष्ठ व्यक्ति थे। गौरपाद दास बाबा जी महाराज उस समय नवद्वीप में एक धर्मशाला में तहखाने में बैठे हुए थे। विषयों का जितना गंध होता है साधारण आदमी के लिए, विषय का गंध इन लोगों को नहीं मालूम होता है, विषय लोगों को या संसारी लोगों को, वो पैखाना से भी बदतर है। इनका ये विषय लोग इनको तंग करते थे, ये आप कृपा कीजिए, धन दीजिए, पुत्र दीजिए, संसारिक चीजें दीजिए, या साधारण रूप में भक्ति मांगते थे, इसलिए तंग आकर के पैखाना में बैठते। इस बच्चे ने ठीक कहा, पैखाना में बैठना ये देखना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि पैखाने में बैठ करके क्या वो चिंतन करते हैं, कैसे वो भजन करते थे, उनका भावना क्या थी, ये सब गंभीर धर्म के विषय हैं। उनको संसार वाले लोग इस प्रकार से श्रीमती राधिका का चिंतन, अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करने से बाधा देते थे। वहां पर वो समझेंगे ये पागल हैं, अथवा ये यहाँ पर पैखाना टहखाना है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए छिप करके आशा कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है, जैसे हमारी गोस्वामियों को था। इसलिए वो कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण उस समय में कर रहे हैं जिसमें वो डूबे हुए हैं। इसको समझना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो रस के समुद्र हैं, उनकी वो सब चिंताएं कर रहे हैं उस समय में, इसलिए उनको गोलोक वृंदावन से खींच करके कोई विषय संसार में लाता है तो जैसे आदमी छटफट करता है, जैसे गाय और कृष्ण के सखा यमुना के किनारे छाया में पागुर कर रहे थे और बड़े आराम के साथ में भोजन कर रहे थे, और तत्क्षणात आग में जैसे जलने लगे, या कोई व्यक्ति उसको तुरंत आग में जलाया जाए उससे भी अधिक उन लोगों को वेदना होती है उस जगत से यदि कुछ खेच करके इस जगत में उनको ला देता है। साधारण लोग इस चीज को नहीं समझते हैं ये वो कहां पर है। इसलिए गुरु पाद पद्म या वैसे वैष्णव लोग गौर किशोर दास महाराज जी कौन से चिंतन में वो हैं, भगवत भजन के चरम अवस्था में वो लोग हैं, इसलिए इन लोगों को ये तंग करते हैं। उस समय यदि साधारण भक्ति की भी बात पूछी जाए तो उनको बहुत वो तंग हो जाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए वो पैखाना के अंदर में मालूम होता है जो बैठ करके भजन कर रहे हैं कोई ना मिले, किंतु किस लिए? उस चीज की रक्षा करने के लिए। और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर और डीएसपी एसपी सब उनके पास में गए और उन्होंने कहा बाबा जी महाराज हम लोग आपके दर्शनों के लिए आए हैं, हम व्यवस्था के लिए आए हैं, आपके लिए पक्का हम महल बना देंगे, सुंदर भजन कुटी बना देंगे, आप उसमें से निकल करके इधर में आइए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उठ नहीं सकता, आमी नोटे परी गए, बहुत कहा नहीं गए। और आज कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई एसपी आ जाए, उसकी तो बात क्या, एक सब इंस्पेक्टर आ जाए, हम लोग गले में माला देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे और सोचे नहीं हमारा भजन का फल यही मिल गया। आजकल ऐसा समझ रहे हैं, किंतु गौर गोस्वामी किशोरदास बाबा जी महाराज ने उन सबको भगा दिया। किंतु हमारे गुरु जी जब गए तो गुरु जी से गुरु जी ने कहा और उनके साथ में सरोज पिसी माथी और कौन गोविंद गौर गोविंद ब्रह्मचारी जो पीछे से नेमी महाराज हुए थे वो लोग सब लोग गए तो इन लोगों ने कहा बाबा जी महाराज हम आपके दर्शन के लिए हैं, दरवाजा खोलिए। बोले जामी लौटते पारी ना, मैं खोल नहीं सकता, मैं बहुत बीमार हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग श्रील सरस्वती गोस्वामी के आश्रित हैं। ओ सरस्वती ठाकुरे, अच्छा अच्छा बाबा, बस उठ करके खोल दिया। ये वैष्णव के आश्रय लैया भजे कृष्ण नहीं नहीं तारे नहीं चले आठ सौ मरे आकार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का थोड़ा सा संबंध बतलाने के साथ साथ में उठ करके खड़े हो करके और दरवाजा खोल करके भीतर के ले गए। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? गुरु जी महाराज ने कहा जी आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हारे समस्त जीवन की जितनी विपत्तियां हैं मैं अपने सिर पर ले लेता हूं, तुम जाकर के सत्संग से भजन करो, तुमको कोई भी कभी विघ्न बाधा नहीं हो। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे बड़ी बड़ी विपत्ति गुरु महाराज जी के प्रचार के समय में आई, सत्य के एकमात्र निर्भीक वक्ता थे, तो उन पर बड़ी विपत्तियां आई, किंतु गौर कोशोदास भगवान महाराज जी के कृपा से वो सब दूरीभूत हो गई, जैसे बादल आते हैं और छट जाते हैं वैसे। इसलिए महाप्रभुओं की कृपाओं में ये सब बल रहता है। तो गुरु महाराज इसी को कह करके रोते थे जे कैसे उनकी कृपा हुई, आज हमारा भजन में जितनी भी विघ्न बाधा आई, प्रचार में जितनी विघ्न बाधा आई, सब उनकी कृपा से दूर हो जाए। हम लोग भी इस पर विश्वास करें, ऐसा जरूर होता है यदि गुरु वैष्णव की कृपा हो जाती है, जितने प्रकार के भजन में बाधाएं विपत्तियां हैं वो सब दूर हो जाती है। कोई एक व्यक्ति इनके पास में आया, कार्य आप कृपा कीजिए। कृपा किसको कहते हैं? यदि किसी को कृष्ण भजन में लगा दिया जाए इसको कृपा कहते हैं। तो गौर कुशोदास आज महाराज से जबकि वो पांच सात दस बार कहा तो उन्होंने कहा भजन कृपा लेगा, अच्छा लो। उन्होंने अपनी डोर कॉपिन खोल करके उसको देने लगे। डोर कॉपिन खोलने का मतलब क्या? तो पहले बाबा जी वेश जो है वेश ग्रहण करो, तो ये संसार से विरक्ति का ये वेश है, डोर कॉपिन लो, संसार छोड़ करके आज क्या यहीं पर बैठ करके भजन करो। बस साथ ही साथ वो भाग करके चला गया, कृपा नहीं लिया। यदि हम लोग रहते तो क्या करते, तत्क्षणात ले लेते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियतां सुतो यदि लब्धते तत् लोल्लमपि मूल्यानम् जन्म कोटि सुकृत न लभते। वो गौर कुशोदास बाज महाराज अपनी डोर पॉपिंग के माध्यम से अपना जो स्वभाव सिद्ध विप्रलम्भ रसानुभूति ये उसको दे देते, किंतु ये दुर्भागा ने नहीं समझ सका और नहीं ले सका। हम लोगों में भी ऐसे हैं, हम लोग गुरु जी भी हम लोगों को भी ये सब देना चाहते हैं, किंतु हम लोग विषय इतना गदगद करके रखा है यहाँ जो उनकी चीजों को हम ले नहीं पाते। कृपा करने के लिए तो आए हैं, किंतु गुरु जी की ये कृपा हम कहाँ ले रहे हैं। ये सब गुरु वर्गों के आचार में देखा आचार विचार में देखा जाए। एक समय में ये कासिम बाजार के राजा मनिंद्रनाथ नंदी उनके पास में आए, आपको सभापतित्व करना है एक सभा का, आप चलेंगे सभापति आपको बनाए। हम रहते थे कहते बहुत अच्छा, माला गुलाब की बड़ी बड़ी मोटी मोटी रख लेना, हम रहते तो कहते। और उन्होंने उनको क्या कहा, अच्छा ये किस लिए सभा करेगा और हमको सभापति बनाएगा, तो भक्ति के प्रचार के लिए। अच्छा एक बात करो, तुम सब छाट छोड़ करके आ जाओ और हम तुम्हारे खाने पीने सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे, तुमको कोई भी चिंता नहीं करनी, पहले तुम यहीं से आरंभ करो, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तुम पहले आरंभ करो तो यहीं से भजन करना तो दूसरों को शिक्षा देगा। अंत में वो भी भाग। एक आदमी ने कहा, पहले उनके पास में रहता था, कुछ दिनों के बाद में वो घर चला गया और शादी करके आया अपनी पत्नी को साथ में लेकर के। कहा जी बाबा जी महाराज हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा कीजिए, मैंने कृष्णदासी संग्रह किया है। ओहो बहुत अच्छा किया तुमने, तो बहुत अच्छा किया, ठीक है कृष्णदासी है ना, तो इस दासी को कृष्णदासी समझना, गोपी समझना, और तुम इनके चरणों की पूजा करना, खबरदार यदि भोग बुद्धि किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बस सुनते ही एकदम वहां से भागा। कृष्णदासी और कृष्ण का संसार करना ऐसा सहज नहीं है, गुरु वैष्णव लोग इसके लिए आदेश नहीं देते। ये कृष्णदासी हम नहीं समझते हैं, कृष्णदासी यदि हम समझते तो हम तो उसकी सेवा करते, भोग बुद्धि नहीं रखते, किंतु हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग तो सन्यासी होकर के भी फिर विवाह कर रहे हैं, विवाह माने बंताती कर रहे हैं, जो पुरुष की किया फिर उसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए इन सबसे से दूर रहना चाहिए। सब गौर किशोर दास बाबा महाराज जी की कृपा होगी। अभी आप लोगों ने सुना ये ब्रह्मचारी जी ने बतलाया, कोई एक महिला थी वृद्धा और गौर किशोर दास बाबा महाराज ने ऊपर कुछ छाके में रख दिया था खाने की चीज, एक सांप उस पर चढ़ गया, बुढ़िया ने देख लिया। थोड़ी देर के बाद में बाबा जी आए तो उसने कहा कि बाबा जी महाराज वो मत खाना, तो उन्होंने सुना नहीं सुन करके भी, अरे इस पर सांप चढ़ गया था तो अभी नहीं कुछ बोल, अरे इसको जूठा कर गया है आप खाएंगे तो मर जाएंगे, क्या बक रही है यहां से भाग जाओ, हम मरेंगे या बचेंगे तुमको क्या जरूरत है। क्योंकि उनका थोड़ा सा स्नेह आकर के फिर बड़ा स्नेह आएगा, फिर धीरे धीरे बड़ा स्नेह आते आते और उसी में हम लोगों को डुबा करके खत्म कर। ये स्त्री के लिए, पुरुष पुरुष के लिए, स्त्री दोनों के लिए कह रहे हैं, एक के लिए नहीं। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति भी वैसा ही होना चाहिए, कहीं डूब न मर जाए। सांप काट देना, आग में जल मरना ये कोई बुरी बात नहीं है, साथ ही साथ फिर जन्म होगा, फिर भजन का उपयोग मिल जाएगा समय। किंतु जिसको वो स्त्री या पुरुष का वो जो आसक्ति रूपी सांप दस देगा, जन्म जन्मांतर उसका नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस समय विषय में सब सोच समझ करके विचार करके सब करना चाहिए। और भी इनके जीवन चरित्र की बहुत सी बातें हैं, यदि हो सकेगा तो कल वो सब बतलाएंगे, आज अभी समय हो गया है। अभी भीतर में जल्दी से आरती कर करके 5 मिनट में और तब आप लोग सब यहाँ पर बैठ जाएंगे। अभी वो सब लोग प्रस्तुत हो गए हैं, अभिनय आप लोग देखेंगे। कल हम लोग सवेरे 7 बजे के
जचा कदारसनिधे विश्वानुजाया ततकेलि कुञ्ज भवनंगनमर्जनि मनसिक्षा तृतीय श्लोक यदि क्षेरावासम ब्रज भू विसरागम प्रतिजनो जुअगंतम तच्चेत परिचरितुम आराध विलसे स्वरूपम श्री रूपम सगणमिह तस्य ब्रजमपि स्व स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणं तदा स्वं श्रीणु मनः।
जो लोग भजन करना चाहते हैं, विशेष करके हमारे गोसाइयों के अनुगत होकर के जो भजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पहले श्लोक में उन्होंने बतलाया है जो किस प्रकार से दम्भ इत्यादि छोड़ करके गुरु जी ने गोष्ठ वृंदावन में गोष्ठालय सु गोष्ठों के जो रहने वाले हैं ब्रजवासी साधारण भक्तों और ब्राह्मणों अपने मंत्र और नाम के प्रति और राधा कृष्ण दोनों के चरणों में शरणागत के प्रति रतिम अपूर्वम अपूर्व रति कर प्रचुर प्रेम कर, दम्भ को छोड़ो। संसारी जितनी बातें हैं संसार में आसक्ति है, ब्राह्मण शक्ति इत्यादि, ये सब दम्भ है। दम्भ को पहले छोड़ो और तब इनमें हे मन तुम इन लोगों में प्रचुर रति करो। रति मैंने यहाँ पहले ही से आरंभ किया, और रति मैंने श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और ये तब रति, ऐसे रति करो। इसलिए इससे प्रतीत होता है कि यह लोभमयी भक्ति है। लोभमयी ये साधारण भक्ति नहीं है। दूसरे में उन्होंने बतलाया यदि तुम लोग राधा कृष्ण की ब्रज में रह करके ब्रज की भांति यदि तुम लोग उनकी प्रचुर परिचर्या, यहाँ पर भजन साधन भी नहीं लिखा, प्रचुर परिचर्या, प्रचुर यदि सेवा करना चाहते हो तो जगत में या शास्त्रों में जो धर्म और अधर्म जो कहा गया है ये सबको छोड़ करके प्रचुर राधा जी का और कृष्ण जी का ब्रज में रह करके भजन करो। यदि ब्रज में नहीं होता है तो मन के द्वारा भी करो। सचिनंदन को नंदनंदन समझो। इसलिए भजन के प्रारंभ में उनकी कृपा प्रार्थना करके भजन आरंभ करो और गुरु जी को भगवान से अभिन्न जान करके भी उनका प्रिय सेवक समझो। अभिन्न का तात्पर्य प्रियत्व से है। इस तरह से निरंतर निश्चित रूप में ऐसा भजन करो। इस श्लोक में बतलाया कि ब्रज में रहकर भजन करना चाहिए तो किस रूप में करना चाहिए, कैसे ब्रज में वास होगा। यदि इच्छे आवासम ब्रजभूवि स्वरागम प्रतिजनु जुवर द्वंदम तच्चेत परिचर तुम आराधविलसि। यदि तुम्हारी राधा कृष्ण दोनों के चरणों में अत्यंत राग के साथ में अनुराग के साथ में यदि जन्म जन्मांतरों में भजन करने की इच्छा है, विशेष करके ब्रज में रह करके अनुराग से राधा कृष्ण की भजन करने की इच्छा है जन्म जन्म में, तो तुमको एक सूक्ष्म बात बतलाते हैं। तो तुमको क्या करना होगा, स्वरूपम श्री रूपम सहगणमिह तस्य अग्रजम अपि। तो तुम प्रेम के भंडारी चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर स्वरूप दामोदर राय रामानंद और गण के सहित अर्थात तो अपने परिवार के सहित या गण के सहित रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके अग्रज जो हैं इनका नाम ले ले करके रो, नित्य स्मर, नम, उनका नमस्कार करो और उनका स्मरण करो। हेमन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर बार बार विनती तुम्हारे चरण में करता हूं, यदि भजन करने की इच्छा है तो ऐसा करो। यहां पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन दर्पण में ये बतला रहे हैं। यहां पर कोई ये प्रश्न करे, प्रतिजनु माने क्या? जन्म जन्मांतर में प्रतिजन्म। तो लोग जो भगवान का भजन करते हैं तो उनका जन्म मरण आवागमन क्या बंद नहीं हो जाता? वो बंद करने के लिए चेष्टा नहीं करते? अधिकांश लोग तो यही कहते हैं कि भजन करते करते हमारा जन्म मरण बंद हो जाएगा। कहते नहीं, भक्तों के भजन काल से ही भक्ति तीन प्रकार की, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ये साधन के समय से ही भक्ति ऐसी रसमयी है कि भक्त लोग जन्म मरण बंद नहीं करना चाहते। जब तक कि भक्ति अपनी परिपूर्णतम चरम परिपाक की अवस्था में नहीं आ जाए, तब तक एक जन्म नहीं हजारों जन्म में जन्म लेकर के ब्रज में प्रीतिपूर्वक वास करने की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहते, मुक्ति होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ब्रज में ही हमारा प्रति जन्म हो और रसिक वैष्णवों का मैं संग लाभ करूं, जिससे कि मेरी श्रद्धा से लेकर के श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और भावावस्था तक, जब तक ये साधन भक्ति परिपक्व होने पर भाव भक्ति होती है और भाव भक्ति परिपक्व होने पर प्रेम भक्ति होती है, तो जब तक प्रेम की पूर्णतम अवस्था ना आ जाए तब तक हमारा जन्म होता रहे। एक कमल का फूल है या गुलाब का फूल है, पहले कली स्थिति में है, उसको तोड़ लो तो वैसे ही बंद की बंद रह जाएगी, सूख जाएगी। उसे थोड़ी सी विकसित हुई किंतु उसमें पूरी नहीं हुई और उसमें सुगंध नहीं आया, उसमें माधुर्य नहीं आया, उसमें पराग नहीं आए, तो खिली तो कुछ है अधखिली। उसका संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य सुगंध ये सब नहीं इसमें आएगा। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, उसमें पराग आ जाएगा, उसमें मधु आएगी, उसको भ्रमर झंकार करने, उसका रस पान करने लगे, तब उसमें पूरा सुगंध से सब विकसित हो जाएगा। उसके पहले किसी भी स्थिति में तोड़ लो तो वो पूर्व विकसित नहीं हो। ऐसे ये भक्ति जो है, भक्त लोग चाहते हैं कि जब तक कि वो अवस्था न आए, कृष्ण के दर्शन की योग्यता न आए, कृष्ण का दर्शन भी हो जाए और वह प्रेम आ जाए जिससे वो वशीभूत होते हैं, तब तक के लिए हमारा बार बार जन्म होता रहे। और उसमें भी ये भक्ति बड़ी रसमयी है, उसका चिंतन करने से बहुत ही उसमें आनंद भी होता है, कृष्ण को भी आनंद होता है इनको। किंतु ज्ञान मार्ग और योग मार्ग कर्म मार्ग के साधन बड़ा कष्ट है, किंतु उसमें आनंद है, भजन करने में भी आनंद। इसलिए भक्त लोग नहीं चाहते कि हमारा जन्म बंद हो जाए और हम मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए कोई भी भक्त गौड़ीय वैष्णव ये नहीं चाहता है कि हमारा आवागमन बंद हो जाए। जब तक कि पूर्ण रूप से सिद्धि न हो तब तक हमारा जन्म होता रहे। दूसरा एक और प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के एक वैष्णव से दीक्षा ले लिया और उससे शिक्षा भी लिया, तो ये जो रागानुगा भक्ति है या अंत में सिद्धि होने पर रागात्मिक भक्ति के साथ में ब्रजवास की संभावना है या नहीं, फिर से समझो, कोई रामानंदी संप्रदाय में, कोई रामानुज संप्रदाय में, कोई मध्य संप्रदाय में, कोई दूसरे संप्रदाय में दीक्षित हुआ, मंत्र और भजन कर रहा है, तो जब भजन की अवस्था परिपक्व हो जाएगी तो उसको ब्रजवास की प्राप्ति होगी कि नहीं, और अनुराग के सहित में राधा कृष्ण की वो सेवा पा सकता है कि नहीं, उसी के उत्तर में ये श्लोक कहा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, राधा कृष्ण जुगल की रागात्मिक भक्ति, ब्रज प्रेम का दान करने वाले उनके नितांत गुण रहस्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के प्रकाशक महाबदान्य श्री चैतन्य महापुरुष के अंतरंग प्रियकर स्वरूप रूप और सनातन इत्यादि जो गुरु परंपरा है, वैसे महात्मा महादुर्लभ ब्रज प्रेम के मूल भंडारी और संरक्षक ये लोग हैं।